नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, स्वागत है आपका।
धन्यवाद शक्ति।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारतीय एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय निशानेबाज एना वेलिन वालारिविन ने जर्मनी के म्यूनिक में ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स में कांस्य पदक जीता। पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को प्रतिष्ठित ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2023-25 के फाइनल मुकाबले में कल से ऑस्ट्रेलिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने कल इंसब्रुक में ऑस्ट्रेलिया रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की 10 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। उन्होंने 47:54 के समय के साथ इस सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं पुरुषों की 35 किलोमीटर स्पर्धा में संदीप कुमार ने 2:38:45 के समय के साथ रजत पदक और राम बाबू ने 2:41:47 के समय के साथ कांस्य पदक जीता। सबसे पहले उत्तरा जी, बात करते हैं प्रियंका की परफॉर्मेंस की। सीजन में पहली जीत आ गई है।
बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी था क्योंकि एशियन चैम्पियनशिप के लिए नहीं हुआ था, तो हालांकि उन्होंने परफॉर्म उसके लिए पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। इनका पहला ही 10K है, तो रेस वॉकिंग जितना आसान दिखता है लोगों को उतना है नहीं। उस हिसाब से उन्होंने जिस तरह से जो टाइम निकाला, हालांकि वो उनके पर्सनल बेस्ट से थोड़ा सा दूर है, करीब 2-2.5 मिनट दूर है, पर सीजन की पहली रेस है और बाहर जाके परफॉर्म करना हमेशा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपको कंडीशंस के हिसाब से देखना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वाकई बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन रहा है उनका।
और अगर भारतीय पुरुष खिलाड़ियों की बात की जाए जिन्होंने 35 किलोमीटर वॉक में शानदार समय निकाला, और भारत के जाने माने खिलाड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके प्रदर्शन पे आप क्या कहना चाहेंगी?
देखिए, अगले साल एशियन गेम्स जो रेस वॉकिंग या जितनी भी ये लंबी दूरी के स्पेशली रेस इवेंट्स होते हैं, चाहे वो मैराथन हो या रेस वॉकिंग हो, उसमें ऐसा नहीं होता बाकी इवेंट्स की तरह आपको साल में 10-15 इवेंट्स नहीं मिलते पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अभी जैसे अगर हम प्रियंका की बात करें तो आधा साल निकल गया है और वो अपने पहले ही उन्होंने एक एक ही इवेंट किए हैं, चाहे वो 20 किलोमीटर हो 10 किलोमीटर हो, वो एक एक उन्होंने सिर्फ इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। तो बहुत अलग तरह की प्रिपरेशन होती है। उस हिसाब से देखा जाए तो अगले साल एशियन गेम्स में, क्योंकि एशियन गेम्स में हमारा उस तरह से कभी नहीं आ पाया है रेस रोड इवेंट्स में, तो उसके लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल सही तो शुरुआत है। और अभी जून चल रहा है, हमारे पास करीब साल के आसपास है खिलाड़ियों के पास क्वालिफाई करने के लिए भी और अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए भी, तो मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है रेस वॉकर्स के लिए। यहाँ से आगे जब चीज़ें जाएंगी तो थोड़ा और बेटर ही होते जाएंगे।
जी बिल्कुल, इस तरह के इवेंट्स के लिए, चाहे वो क्रॉस कंट्री हो या फिर जो लंबी दूरी की दौड़े होती हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रतियोगिताएँ आपको साल भर में खुद को आजमाने के लिए नहीं मिल पाती।
बिल्कुल।
भारतीय निशानेबाज इना वेलिन वालारिविन ने जर्मनी के म्यूनिक में चल रहे ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स फाइनल्स में कांस्य पदक जीत लिया है। इनकी परफॉर्मेंस पे अगर बात की जाए, क्वालिफिकेशन राउंड में लग रहा था कि शायद सिल्वर गोल्ड के करीब रहेंगी, लेकिन
देखिए एक नया रिकॉर्ड बनाया था, नेशनल रिकॉर्ड, और फाइनल्स में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। बट इसीलिए शूटिंग इतना बहुत ही माइन्यूट और बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस का गेम माना जाता है। एक खराब शॉट आपको गोल्ड से नीचे ब्रॉन्ज पे ले जा सकता है। अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने उस चीज़ को अफेक्ट नहीं होने दिया जो उसके बाकी के जो 2-3 रिमेनिंग शॉट्स थे उन पे, इसीलिए ब्रॉन्ज आ पाया। लेकिन अगर वो 9.8 जो उन्होंने मारा था, अगर उसको वो आगे लेके चलती या कहीं आधा परसेंट भी उनके दिमाग में रह जाता तो शायद वो मेडल से चूक भी जाती, जो बहुत खराब होता क्योंकि आप क्वालिफाइंग में टॉप करते हो, नया रिकॉर्ड बनाते हो, लेकिन एक खराब शॉट आपका सिर्फ, और उसको आप खराब भी नहीं कहेंगे क्योंकि नॉर्मल टाइम में शायद 9.8 इतना खराब शॉट नहीं है, पर जिस लेवल पे प्रदर्शन होता है, खासकर कि भारतीय निशानेबाज जिस लेवल का प्रदर्शन करते हैं, मुझे लगता है 11L खुद भी उस एक शॉट से थोड़ा सा निराश जरूर होंगी। पर मेडल आया, ये अच्छी बात बात है, और अभी आगे और काफी मुकाबले हैं उनके पास, वर्ल्ड कप फाइनल्स होंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होंगे, तो और इंडिया में भी बड़े मुकाबले बचे हैं इस साल के अंत के आसपास, शूटिंग लीग भी आएगी, तो मुझे लगता है कि यहां से आगे और बेहतर ही होगा अभी।
जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही कड़ा मुकाबला था जो स्वर्ण पदक और रजत पदक के बीच में अंतर रहा, मात्र 0.1 अंक का है।
बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ना कि वो अगर 9.8 की जगह अगर वो एक 10 पे मारती तो हमें नहीं पता कि क्या हो सकता था। हो सकता है कि वो ब्रॉन्ज सिल्वर में बदल सकता था उनका, क्योंकि वो आगे के 2-3 शॉट्स में वो आधा पॉइंट, एक पॉइंट वन, पॉइंट फाइव, पॉइंट वन, पॉइंट टू पे भी अगर आपका डिफरेंस आ जाता है तो उसमें आपका पोजीशन जो है वो बहुत ऊपर नीचे हो जाता है शूटिंग में।
जी बिल्कुल, हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में भारत और पदकों के साथ पदक तालिका में और आगे बढ़ता हुआ नजर आए। और अब बात करते हैं क्रिकेट की। पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को प्रतिष्ठित आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये उनके शानदार क्रिकेट करियर की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। एक रिपोर्ट।
भारत के कैप्टन कूल एमएस धोनी ने एक और यादगार उपलब्धि अपनी क्रिकेट यात्रा में जोड़ ली है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कल उन्हें प्रतिष्ठित आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल करने की घोषणा की। कुल 7 क्रिकेटरों को इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज मैथ्यू हेडन और दक्षिण अफ्रीका के हाशिम मामला जैसे महान खिलाड़ी शामिल है। दबाव में धैर्य बनाए रखने और क्रिकेट की बेजोड़ समझ रखने वाले एमएस धोनी को खेल के सबसे महान फिनिशरों, कप्तान और विकेट कीपरों में गिना जाता है। आईसीसी ने बयान में कहा है कि भारत के लिए विभिन्न प्रारूपों में 538 मैचों में 17,266 अंतर्राष्ट्रीय रन और विकेट कीपिंग में झटके 829 विकेट धोनी की ये आंकड़े न केवल उत्कृष्टता बल्कि असाधारण स्थिरता और फिटनेस को दर्शाते हैं। धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में एक दिवसीय विश्व कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है। एमएस धोनी ने अपने करियर में कई रिकॉर्ड बनाए और ध्वस्त किए हैं। एमएस धोनी ने इस उपलब्धि पर कहा कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नामित होना सम्मान की बात है जो दुनिया भर के विभिन्न पीढ़ियों के क्रिकेटरों के योगदान को मान्यता देता है। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं हमेशा संजो कर रखूंगा। धोनी ने वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और वे अभी भी आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
उत्तरा जी, धोनी ऐसे खिलाड़ी हैं, यदि उनका आकलन हम आंकड़ों के आधार पे करें तो शायद मुझे लगता है कि वो जायज नहीं होगा जितना बड़ा उनका कद है।
देखिए, आंकड़े भी ऐसा नहीं है कि उनके कोई बहुत ज्यादा खराब हैं। अगर आप जीत की बात करें तो ऐसी कोई ट्रॉफी है नहीं जो उन्होंने नहीं जीती है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, टेस्ट नंबर वन हो, या ODI वर्ल्ड कप हो, या T20 वर्ल्ड कप हो, या IPL टीम के साथ हो, ट्रॉफीज उनके नाम बहुत है। और जिस टाइम पे उन्होंने चार्ज लिया था भारतीय टीम का, एक जिस दौर से उस वक्त भारतीय क्रिकेट गुजर रही थी, वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। जरूरी नहीं है हर किसी को हर कोई पसंद करे, और अगर ऐसा होगा तो ऐसा तो शायद भगवान के साथ भी नहीं होता है। पर धोनी ने जिस तरह से भारतीय क्रिकेट को उस दौर से बाहर निकाला और वो रिजल्ट दिए जो शायद भारतीय पब्लिक चाहती थी उस टाइम पे, उस दौर को भुला के जीत की तरफ आगे बढ़ने के लिए, अगर हम अभी की टीम देखें या इसके पहले वाली भी टीम देखें, तो बहुत हद तक वो धोनी की ही टीम थी जो उन्होंने एक तैयार की थी। कई खिलाड़ी उनसे पहले थे और उनके बाद भी खेलते रहे, लेकिन ज्यादातर खिलाड़ी जो थे वो उनके साथ आए या उनके बाद आए, जो आज भी शायद भारतीय कोर का एक हिस्सा हैं अगर बहुत से खिलाड़ियों की बात करें तो। उस हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल अगर हम कहें कि उन्होंने कितने रन बनाए या उन्होंने कितनी स्टंपिंग्स की या उतने कैच लिए, वो आंकड़े जरूर उनको शायद टॉप 5 या टॉप 10 में ना रख पाए, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिहाज से अगर हम देखें तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो शायद किसी भी और कप्तान से कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा। उन्होंने वो टाइटल्स जिताए जिनकी जरूरत हमको थी, जिनकी बहुत समय से चाह थी, चाहे वो IPL में डैडीज आर्मी करके बात करें, जब वो फिक्सिंग वाले आरोप के बाद वापस आई थी टीम बैन होने के बाद, तो उन्होंने उसको जिताया। भारतीय टीम में जो एक टाइटल कई सालों से नहीं आया था, ODI वर्ल्ड कप 2011 का, वो उन्होंने जिताया। और ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई हर खिलाड़ी, मतलब ऑस्ट्रेलिया टाइप की अगर हम बात करें तो वहां पे 11 के 11 मैच विनर्स थे। धोनी ने 11 मैच विनर्स नहीं तैयार किए, उन्होंने 11 खिलाड़ियों की एक ऐसी टीम तैयार की जो गिव अप नहीं करती थी, और वो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहेगा, क्योंकि सारे सारे चैंपियंस के साथ तो टीम जीत सकती है, लेकिन खराब दौर से निकल के यंगस्टर्स को इकट्ठा करके एक कोर ग्रुप तैयार करना और उस टीम को वर्ल्ड चैंपियन लेवल तक लेके जाना, वो उनकी लीडरशिप दर्शाता है। तो मुझे लगता है भारतीय क्रिकेट के संदर्भ में अगर हम कहें तो धोनी का कॉन्ट्रीब्यूशन आंकड़ों से नहीं बल्कि उनकी लीडरशिप और टीम को उन्होंने जो बनाया है उसके लिहाज पे देखना चाहिए।
जी बिल्कुल, 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी छोड़ने के बाद जहां से उन्होंने टीम को उठाया था और 6 साल के अंदर तीनों ट्रॉफी उन्होंने जीत के दिलाई,
और कोई उस टाइम पे कप्तानी करना नहीं चाहता था द्रविड़ के छोड़ने के बाद, क्योंकि टीम जिस हालत में थी कोई अपने सर पे उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता था सीनियर खिलाड़ी। ऐसे में आके ये एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं बनूंगा और टीम को आगे ले जाऊंगा, ये उनकी लीडरशिप जताता है।
जी बिल्कुल, इंग्लैंड का ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2023-25 के फाइनल मुकाबले के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों टीमों की नजरें जीत हासिल कर WTC का खिताब अपने नाम करने पर होंगी।
ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीमें कल जब ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान में उतरेंगी तो कप्तान पैट कमिंग्स की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया के पास दूसरी बार WTC खिताब जीतने का मौका होगा, जबकि टेम्बा बबुमा अपनी कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका टेस्ट इतिहास में पहली बार मिले इस गोल्डन चांस को भुनाना चाहेंगे और सालों पुराना ICC ट्रॉफी का सूखा समाप्त करना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट इतिहास में अब तक के रिकॉर्ड को देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने 101 मुकाबलों में 54 जीते हैं, वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीमें अब तक 26 मैच जीत चुकी हैं। दोनों देशों के बीच अब तक 21 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। WTC की अंक तालिका देखें तो दक्षिण अफ्रीका 12 में से 8 मैच जीतकर शीर्ष पर रहा, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 19 में से 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। ये WTC का तीसरा संस्करण है। इससे पहले पहला WTC खिताब न्यूजीलैंड ने अपने नाम किया था, जबकि दूसरे खिताब को ऑस्ट्रेलिया ने जीता। दोनों बार भारतीय टीम ही उप विजेता रही थी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
लॉर्ड्स की तेज रफ्तार पिचे तैयार हैं।
बिल्कुल, और बिल्कुल साउथ अफ्रीका को लगातार जिस तरह से उनकी टीम को ये माना जाता रहा है कि वो अंडरडॉग्स भी हैं अभी, और हर मुकाबले में हर फॉर्मेट में बहुत ही जीत के करीब आके पीछे रह जाते हैं, तो बिल्कुल कोशिश यही करेंगे वो कि ऑस्ट्रेलिया को रोक सके। आसान बिल्कुल नहीं होगा, डिफेंडिंग चैंपियन है और ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा है कि वो चाहे सारा साल उस तरह से ना भी उतना परफॉर्म करें, बहुत ही एवरेज करें, लेकिन जब बड़े मुकाबले होते हैं तो उनके खिलाड़ी स्टेप अप करते हैं, उनका पूरा फोकस बिल्कुल अलग हो जाता है, उनका परफॉर्मेंस अलग हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा बड़े मुकाबलों में जिस तरह से वो प्रदर्शन करते हैं, आपको कई बार लगता है कि क्या ये वही खिलाड़ी है जो 2 महीने पहले कुछ नहीं कर रहा था, पर ये उनका अपना तरीका है, ये उनके खिलाड़ियों का टैलेंट है, ये उनका मेंटल स्ट्रेंथ है कि उन्हें पता है कहां पे अपना गेम बढ़ाना है, कहां पे नीचे करना है, और डिफेंडिंग चैंपियन है, इतनी आसानी से छोड़ने तो वाले नहीं है वो। और इंग्लैंड में जो वेदर रहेगा, जो कंडीशंस रहेंगी, वो भी उनको सूट करेंगी, उम्मीद है कि सूट करेंगी, पर खिलाड़ी उनके पास हर फॉर्मेट के लिए होते हैं, ये हमने 2023 में अपने घर पे जब फाइनल हारे थे तो देखा था, जब सब कुछ हमारे अनुकूल था लेकिन फिर भी वो जीत के ले गए थे हमारे हाथ से ट्रॉफी। तो ऑस्ट्रेलिया को कम आंकना बहुत ही खतरनाक होगा, पर हाँ साउथ अफ्रीका अपने गले से वो चोकर वाला टैग जरूर हटाने के लिए आगे बढ़ेंगे, और पहली बार वो फाइनल में पहुंचे हैं तो इस मौके को वो हाथ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इसके बाद उन्हें नहीं पता कि कब अगला मौका मिलेगा इस लेवल पे खेलने का उनको।
जी बिल्कुल, क्योंकि वाकई सेमीफाइनल नहीं था शायद, इसलिए सीधा
जी बिल्कुल
हार पाई है दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे। और आकाशवाणी इस मैच का आंखों देखा हाल अपने चैनल इंद्रप्रस्थ और इसकी सभी फ्रीक्वेंसी पर आपको सुनाएगा। फुटबॉल में AFC एशिया कप क्वालिफायर में ग्रुप सी के एक मैच में आज भारतीय सीनियर पुरुष टीम को हांगकांग से 0-1 से हार का सामना करना पड़ा। हांगकांग के लिए एकमात्र गोल स्टीवन परेरा ने मैच के अंतिम सेकंडों में पेनल्टी के द्वारा किया, और बेहद महत्वपूर्ण था ये टूर्नामेंट और ये मैच था भारत के लिए आगे क्वालिफाई करने की दृष्टि से, लेकिन शुरुआत में असफलता हाथ लगी। और श्रोताओं, अब समय हो गया आप सभी से विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। उत्तरा जी, आप आई और आपने तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।